23 अगस्त दिन मंगलवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। उत्तर प्रदेश और बिहार में बाढ़ की स्थिति काफी खराब। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
जो डैमेज हुआ है उसका आकलन जो कम से कम सप्ताह भर के बाद ही संभव होगा तो वो जितना जरूरत होगा क्योंकि हमें तो देना ही है।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों की यात्रा पर जाएंगे कश्मीर। आपकी मुलाकात कराएंगे जॉन मोहम्मद बट से, जो अपना समय अफगानिस्तान और कुमाऊं में बिताते हैं।
मेरे पास पैसा नहीं था, मैं परवा भी नहीं था, इसलिए वो लोग मेहमान नवाज तो है ही और बहुत ज्यादा वो चाहते थे कि बस हम भी उनकी रास्ता इख्तियार करें और उनकी तरह मुसलमान हो जाएं।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने गंगा नदी से गाद निकालने में केंद्र सरकार की मदद मांगी और ये भी कहा कि फरक्का बैराज को हटा दिया जाए क्योंकि इससे नदी में गाद जमा होने का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। उन्होंने कहा कि इससे हर साल गंगा में आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटा जा सकेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक बाढ़ के कारण 95 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। रियो ओलंपिक में भारतीय धावक ओपी जैशा को मैराथन दौड़ में पानी न मिलने के आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है जो 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में संयुक्त सचिव खेल ओंकार केडिया और निदेशक विवेक नारायण है। भारतीय मैराथन धावक ओपी जैशा ने आरोप लगाया है कि जब वो रियो ओलंपिक में 42 किलोमीटर के मैराथन में हिस्सा ले रही थी तो उन्हें रास्ते में पानी पिलाने की व्यवस्था तक नहीं की गई थी। इससे पहले खेल मंत्री विजय गोयल ने जैशा मामले में कहा था कि खेल मंत्रालय हर बात के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान के कराची में निजी टीवी चैनल ARY के दफ्तर पर हमले के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने MQM पार्टी के 5 नेताओं को गिरफ्तार किया है और पार्टी के दफ्तर पर छापे मारे हैं। पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है और पार्टी के दफ्तर से हथियार बरामद किए गए हैं। सोमवार को MQM के निर्वासित नेता अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तानी मीडिया की आलोचना की थी और कहा था कि पाकिस्तान दुनिया के लिए कैंसर है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांगी थी। पाकिस्तान में सेना के कमांडर ब्रिगेडियर खुर्रम शहजाद ने आज की कार्रवाई के बारे में ये बताया।
इन जगहों से हमें काफ़ी मटेरियल जो है वो प्रिंटेड मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो एंटी स्टेट है वो काफ़ी मकदार में मिला है। दौरान सर्च जो जगह हमने सर्च की हैं वहाँ से कुछ हमें वेपन भी मिले हैं जिनमें।
ये थे ब्रिगेडियर खुर्रम शहजाद के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी अरब में अपनी नौकरियां खो चुके भारतीय कामगारों से 25 सितंबर तक वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय श्रमिक 25 सितंबर तक वापस नहीं लौटेंगे उन्हें वहां रहने, खाने और लौटने की व्यवस्था खुद करनी होगी। सुषमा स्वराज ने कहा कि 25 सितंबर तक लौटने के लिए केंद्र सरकार मुफ्त वापसी का इंतजाम करेगी। आज सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा कि जो श्रमिक कंपनियां बंद होने के कारण निकाल दिए गए हैं उन्हें सलाह है कि वो अपने क्लेम दर्ज करवाकर भारत लौट आएं। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं बाढ़ से। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। राज्य के लगभग 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने अतिरिक्त राहत बल की मांग की है। गंगा और सोन अब भी उफान पर हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार में बाढ़ के कारण बिगड़ती स्थिति को लेकर मुलाकात की है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस बाढ़ से 12 जिलों के करीब 24 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। उत्तर भारत के अन्य इलाकों से में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार के बाढ़ प्रभावित 20 जिलों में भारी नुकसान पहुंचा है और नुकसान की पूरी जानकारी मूल्यांकन के बाद ही दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या नई नहीं है और हर साल राज्य को इसका सामना करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने माना कि इस साल की स्थिति चिंताजनक है।
सहायक कार्य अभी चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी उनको दे दी गई और जो डैमेज हुआ है उसका आकलन जो कम से कम सप्ताह भर के बाद ही संभव होगा, तो वो जो इतना जरूरत होगा क्योंकि हमें तो देना ही है। फसल क्षति की स्थिति में भी देंगे, गृह क्षति की भी स्थिति में देंगे और पूरा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा।
गौरतलब है कि मॉनसून के दौरान बिहार में सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन नेपाल के अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भारी बारिश के बाद नदियों में पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के बड़े हिस्से में बाढ़ आई हुई है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से विशेषज्ञों के एक पैनल को बिहार भेजने को कहा ताकि बाढ़ का स्थायी हल निकाला जा सके। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा कि अगर स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया तो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना की सफलता पर भी प्रश्नचिन्ह उठेगा। नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर तुरंत और सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार ने फरक्का बांध को बार बार आने वाली बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया।
गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की पहली मीटिंग से लेकर उसके आगे की मीटिंगों में मैंने इस प्रश्न को उठाया है और वह यह है कि जो गंगा नदी पर जो फरक्का बराज बना, उस फरक्का बराज के बनने के बाद सिल्ट डिपॉजिट होता चला जा रहा है उसके अपस्ट्रीम में और वो आप समझ लीजिए कि अब वो पटना तक उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट।
उधर जल संसाधन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अफसर सी लाल ने बीबीसी को बताया,
सिल्टिंग जो है ना इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है। सिल्ट डिपोजिशन और इरोजन ये एक नेचुरल फिनोमेना है। एक रिवर में कई जगह ऐसी आती है जहाँ पे सिल्ट डिपोजिट हो जाती है, दूसरी जगह वहाँ पे सिल्ट उसके बाद में अपने आप इरोड हो जाती है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है जो वेलोसिटी के साथ साथ जो है ना वो चलता रहता है।
तो आप कह रहे हैं कि वो जो नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है?
नहीं, नीतीश कुमार जी जो बात कह रहे हैं वो उनके अपने वो हैं प्रेडिक्शंस हैं, नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक स्टडी। अब तक कोई स्टडी में कोई बेस नहीं हुआ है कि फरक्का बैराज के कारण उनके वहां पे फ्लड आ जाए पटना में।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बाढ़ को लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से बात की है और मदद का भरोसा दिलाया है। भोपाल से पत्रकार शुरे नियाजी ने बताया है कि जुलाई और अगस्त में मॉनसून से आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 102 तक पहुंच गई है। हालांकि बाढ़ प्रभावित रीवा, सतना, पन्ना, टीकमगढ़ और मंदसौर जैसे इलाकों में स्थिति बेहतर हो रही है। उधर जयपुर से पत्रकार नारायण बारेट ने बताया कि बाढ़ से हुए हादसों में अब तक राजस्थान में 1 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जैसे प्रभावित इलाकों में पिछले 24 घंटों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी बाढ़ की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य उत्तर प्रदेश के करीब 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। गांवों में जहां खड़ी फसलें बह गई हैं तो वहीं शहरों में भीतर तक पानी घुसने के कारण लोग इधर उधर आने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। राजमार्गों पर भी पानी भर जाने के कारण कई जगहों का संपर्क भी मुख्य शहरों से टूट गया है। ताज़ा जानकारी के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही तो मचाई ही है, सामान्य जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। खासकर लोगों को खाने पीने, इलाज और अन्य तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूलों को तो कई जगह एहतियातन पहले से ही बंद करा दिया गया है और कई सरकारी स्कूलों को ही राहत शिविरों में तब्दील किया गया है। कुछ ही महीने पहले भयानक सूखे और जल संकट से जूझ रहा बुंदेलखंड इलाका अब भयानक बाढ़ की चपेट में आ गया है। बांदा में स्थानीय पत्रकार आशीष सागर बताते हैं।
जा रहे हैं, मतलब बीच की पुलिया थी महुआ के पास, वो पूरी बह गई है। और फिर दूसरे नंबर पे नुकसान हुआ है हमीरपुर का। हमीरपुर में यमुना और बेतवा दोनों बढ़ गई और इधर थोड़ा बहुत कील का पानी मिल गया जाके तिल्ला से। सबसे नुकसान चित्रकूट का है, फिर हमीरपुर है, फिर बांदा।
वहीं गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, केन, टोंस जैसी नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं और रुक रुक कर हो रही बारिश बाढ़ की भयावहता को और बढ़ा रही है। शहरों में कई जगहों पर नावें चल रही हैं और लोगों के आवागमन का यही साधन बन गई हैं। यहां तक कि कई मुख्य मार्गों के भी बाढ़ की चपेट में आ जाने के कारण कुछ शहरों का मुख्य जगहों से संपर्क कट गया है। वाराणसी मुगलसराय मार्ग पर रेल आवागमन भी प्रभावित हुआ है। शहरों में बाढ़ का पानी कितना अंदर पहुंच गया है, इसका उदाहरण गाजीपुर में मिला, जहां जिलाधिकारी के आवास तक पानी भरने की खबर आई। गाजीपुर के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री से जब इस बारे में बात की तो उनका कहना था,
आवास नहीं, खेत का पानी है, जो वहाँ जो निचला एरिया है खेती बाड़ी का वहाँ पर है। मेरे जमानिया तहसील के लगभग 250 गांव है पानी की चपेट में। एनडीआरएफ की वहाँ 4 टीम लगी हुई है, 2 टीम लगी है मोहम्मदाबाद में, वो है पीएससी की मोहम्मदाबाद में, और पानी लगभग चल रहा है 1.83 मीटर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। प्रभावित लोग लगभग 2 कैजुअल्टी।
बाढ़ से प्रभावित लोगों का कहना है कि उनके सामने सबसे ज्यादा संकट खुद को बचाने का है, क्योंकि बाढ़ में घर तो डूबे ही हैं, बारिश के कारण खुले में भी नहीं रह सकते। बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन राहत का काम तेजी से कर रहा है और कुछ जगह सेना की भी मदद ली जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बाढ़ की मुख्य वजह दूसरे राज्यों से छोड़ा गया पानी और लगातार हो रही बारिश है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब कश्मीर। पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से झुलस रही कश्मीर घाटी में हालात का जायजा लेने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह कल श्रीनगर जाएंगे। बीते एक माह के भीतर राजनाथ सिंह का ये दूसरा कश्मीर दौरा होगा। इस बीच खबरें आ रही हैं कि कश्मीर में करीब 2,500 सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया है। घाटी के कई हिस्सों में आज लगातार 46वें दिन भी कर्फ्यू और निषेधाज्ञा लागू है, लेकिन कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील दिए जाने की भी खबरें हैं। मैंने श्रीनगर फोन कर बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से पूछा कि अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जाने के बारे में आपके पास क्या विवरण है।
जी देखें, 26 कंपनीज जो हैं बीएसएफ की, उनको डिप्लॉय किया गया है। हमारी जो बीएसएफ ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा कि एक कंपनी में 100 कर्मचारी होते हैं तो 2,500 से अधिक फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। तो पहले ही, जैसा कि मालूम है कि अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद कोई 10,000 फोर्सेस वहां से फ्री हुई थी और उनको भी रीडिप्लॉय किया गया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए। इसमें मसला ये है कि जो ये 45 दिन से अधिक हुआ है, कोई 1.5 महीने से पैटर्न एक रहा है कि कर्फ्यू तो बहुत सख्ती से लगाया जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारी कर्फ्यू को तोड़कर मोबिलाइज हो जाते हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसमें एक व्यू लिया गया है होम मिनिस्ट्री में राज्य सरकार के साथ कंसल्टेशन के साथ कि ज्यादा डिप्लॉयमेंट से कर्फ्यू को तोड़ने की घटनाएं जो है वो कम हो सकती हैं।
लेकिन इस बीच खबरें आ रही हैं कि कुछ इलाकों से कर्फ्यू को हटाया भी गया है।
हटाया तो नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन की एक नीति रही है कि वो कभी भी कर्फ्यू को हटाने की घोषणा नहीं करते हैं इस डर से कि कहीं ज्यादा लोग बाहर ना आए। लेकिन ये है कि कुछ नाके जो होते हैं, कई इलाकों में जाने की जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे अक्सर नाकाबंदी होती है, तो वहाँ से तार हटाई जाती है, फ्री फ्लो जो है लोगों का हो जाता है। ऐसा आज हुआ है श्रीनगर के कुछ इलाकों में, लेकिन आज भी जो पुराने श्रीनगर में परसों एक मारा गया था एक युवा, प्रदर्शनकारियों पर जो फायरिंग की घटना हुई थी, तो वहाँ आज भी प्रदर्शन हुए। और उत्तरी कश्मीर में बांडीपोरा में प्रदर्शन हुए, वहाँ 2 लोग घायल हुए। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान जिले में प्रदर्शन हुए, वहाँ पे कोई 20 से अधिक लोग घायल हो गए। और पुलवामा के ख्रिव एरिया में जो है वहाँ पे रैली का आयोजन किया गया था अलगाववादियों के कहने पर, लेकिन वहाँ उसको फॉइल किया गया, पुलिस ने वेन्यू को सील किया।
अच्छा, ये बताइए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के लिए कश्मीर जा रहे हैं, उनका क्या एजेंडा है?
जी बिल्कुल, करीब करीब 1 महीना हो गया है जब वो यहाँ आए थे, यहाँ पे मीटिंग वगैरह करके फिर चले गए थे, क्योंकि स्थिति वही है। जाहिर है हर रोज, जैसा कि हमें बताया गया, होम मिनिस्ट्री दिल्ली में कश्मीर की स्थिति का रिव्यू लेती है और राज्य सरकार भी उनको फीड करती रहती है। लेकिन जो पैलेट गन्स पे काफी शोर शराबा हुआ था, और राजनाथ सिंह ने ही पिछले महीने पैलेट गन्स के बारे में कमेटी को नियुक्त किया था और उसकी रिपोर्ट अगले महीने आएगी, तो इस सारे संदर्भ में जो है राजनाथ जी का जो विजिट होगा वो यहाँ पे पॉलिटिकल रीच आउट और सिक्योरिटी क्राउड कंट्रोल जो मैकेनिज्म है उसको दुरुस्त करने के हवाले से। और आज ही जो है आर्मी चीफ भी यहाँ पहुंचे हैं, जनरल दरबीर सिंह सुहाग। तो चूंकि आर्मी भी कन्फ्रंटेशन में आ गई है लोगों के साथ, जब से वो कॉलेज टीचर जो है आर्मी के कैंप में कथित रूप से मारपीट से उनकी मौत हो गई थी, तो आर्मी के विरुद्ध भी अब गुस्सा बढ़ रहा है। पहले तो लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुडा जो है उनका दौरा हुआ और अब खुद आर्मी चीफ आ रहे हैं। तो पूरी तरह से किसी भी लूप होल को नहीं छोड़ना चाहता है प्रशासन, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे राजनीतिक स्तर पे कोई भी बड़ा ब्रेक थ्रू अभी तक नजर नहीं आ रहा।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय, तुर्की ने सीमा पार सीरिया में तथाकथित इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय हुए हैं जब तुर्की के समर्थन वाले सीरिया के विद्रोह गुट सीमावर्ती शहर जराबलूज को आईएस के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक बड़े हमले की योजना बना रहे थे। चरमपंथियों ने तुर्की के कारकामिस शहर में दो हथगोले दागे। शनिवार को दक्षिणी तुर्की में एक आत्मघाती बम धमाके में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले के लिए तुर्की ने आईएस को जिम्मेदार बताया था। तुर्की ने कहा है कि सीमावर्ती इलाके में आईएस का अब पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं के संवाद के साथ अमर शर्मा।
तुर्की की मीडिया के मुताबिक आज सुबह तुर्की के शहर कारकामिस में सीमा पार से दो मोर्टार बम दागे गए, जिसके बाद तुर्की ने उत्तरी सीरिया में स्थित जराबलूस शहर में तथाकथित इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। कारकामिस शहर में हुए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से नागरिकों को सुरक्षा की हिदायत दी।
हम लोगों की सुरक्षा के लिए आपसे अपील करते हैं कि आप घरों से बाहर ना निकलें और मोर्टार हमलों से बचने के लिए अपने घरों की निचली मंजिल में ही रहें।
तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत काउसोग्लू ने कहा कि उत्तरी सीरिया के सीमावर्ती इलाके से तथाकथित इस्लामिक स्टेट का पूरी तरह से सफाया हो जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक सीरिया की सीमा से 64 किलोमीटर दूर तुर्की स्थित गाजियांटेप शहर में 1500 सीरियाई विद्रोही आईएस के खिलाफ हमले के लिए तैयार हैं। इन्हें तुर्की का समर्थन हासिल है। गाजियांटेप में शनिवार को एक शादी समारोह में हुए आत्मघाती बम हमले में 54 लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की ने उत्तरी सीरिया के मनबिज शहर में कुर्द YPG लड़ाकों के ठिकानों पर भी बम बरसाए हैं, जो आईएस के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। गाजियांटेप में मौजूद बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन का कहना है कि इन शहरों पर हुए हमलों का आरोप आईएस पर लग रहा है, लेकिन इन्हें सीरियाई विद्रोहियों के हमले की खबरों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमले में पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ रही है। हमारे संवाददाता के मुताबिक तुर्की में बमबारी का सिलसिला और गहरा सकता है, क्योंकि सीरिया में चल रहे संघर्ष में तुर्की का दखल बढ़ रहा है। कल तुर्की ने आईएस के ठिकानों पर तो गोलीबारी की ही, इसके साथ ही मनबिज शहर में कुर्द YPG लड़ाकों पर भी बम बरसाए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तुर्की के एक अधिकारी ने कहा है कि कुर्द लड़ाकों पर तोपों ने 20 गोले दागे। अधिकारी का कहना था कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य मार्गी विद्रोहियों के लिए एक गलियारा तैयार करना है। उत्तरी सीरिया में आईएस के खिलाफ लड़ाई में YPG मुस्तैदी के साथ संघर्ष कर रहा है। उन्हीं की कोशिशों की वजह से पिछले महीने मनबिज शहर को उनके कब्जे से छुड़ाया गया और जिहादी जराबलूस शहर की ओर भाग निकले, लेकिन तुर्की इन्हें अपने यहाँ चल रहे कुर्द अलगाववादियों PKK के साथ जोड़कर देखता है और उन्हें सीरिया के साथ सटी अपनी सीमा से बाहर कर देने का संकल्प कर चुका है।
तुर्की ने सीरिया में आईएस ठिकानों पर हमले शुरू किए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो वेस्ट इंडीज के ट्रिनिडाड में एक ब्रिटानी ईसाई परिवार में जन्मे और फिर तालीम के लिए ब्रिटेन गए। पढ़ाई में मन नहीं लगा और 70 के दशक में हिप्पी बनने के बाद जॉन बट पाकिस्तान की स्वात घाटी में आए और इस्लाम धर्म अपना लिया। अब 66 वर्ष के हो चुके जॉन मोहम्मद बट इन दिनों अफगानिस्तान और भारत में कुमाऊं इलाके में बारी बारी से समय बिताते हैं। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की जॉन से मुलाकात दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पीछे निजामुद्दीन औलिया की खानख्वाह में हुई।
मेरी एक स्टोरी ये है कि मैं तो ट्रिनिडाड में पैदा हुआ
तो यहाँ ट्रिनिदाद में बोलता हूँ तो लोग नहीं समझते हैं, तो मैं कहता हूँ तो फिर ब्रायन लारा के वतन में पैदा हुआ, तो फिर समझ लेते हैं कि कहाँ। और इसमें अरबी में हम ट्रिनिदाद वेस्ट इंडीज़ को गर्बुल हिंद बोलते हैं, यानी हिंदुस्तान का वेस्टर्न हिस्सा है। तो मैं जब 9 साल का था तो मेरे माँ बाप ने मुझको बस स्कूल पढ़ने के लिए इंग्लैंड ले गए, और रोते रोते बस मैं बस वो किश्ती की जहाज़ में बैठ गया। तो मैं स्कूल में मैं कुछ बागी किस्म का था अपने स्कूल में इंग्लैंड में, इसलिए मैं खुश नहीं था।
कुछ बताएं कि आप इंग्लैंड में जब आपने पढ़ाई की उसके बाद से क्या क्या हुआ?
उसके बाद तो मैं बस दोबारा अपने असली हैसियत को पाने की तलाश में मैं निकल गया इंग्लैंड से। और वो हमारे लिए इसलिए लेट 60s का ज़माना था, वो जो हिप्पीज का ज़माना था, और उसमें एक हिप्पी ट्रेल था जो बिल्कुल हिंदुस्तान की तरफ जाता था। तो हमारे लिए बहुत आसान था हिप्पी ट्रेल को इख्तियार करना। जिन लोगों से मैं इंस्पायर हुआ था, जैसे बॉब डिलन है, यानी हमको ये रास्ता बताया यानी निकलने का, और बस मैं निकल गया। बस स्कूल पढ़ा इंग्लैंड में, ऊपर निकल गया, ऊपर अफगानिस्तान आ गया और हिंदुस्तान आ गया।
तो बताएं जॉन साहब, जब आप अफगानिस्तान आए, हिंदुस्तान आए, तो कैसे आए, पहले क्या करने की सोची थी, बाद में क्या किस चीज़ में?
मैं तो सोच रहा था कि मैं हिंदुस्तान पहुँच जाऊँगा, मेरा ये ख्याल नहीं था कि मैं पठानों के में रहूँगा। मगर पठानों का जो ज़िंदगी थी उस वक्त में बहुत अच्छा था, और उसमें बिल्कुल यानी अमन था, शांति थी, वो बहुत दूसरे के लिए बहुत सोचते थे। मेरे पास पैसा नहीं था, मैं परवाह भी नहीं था, इसलिए वो लोग मेहमान नवाज तो है ही, और बहुत ज़्यादा वो चाहते थे कि बस हम भी उनकी रास्ता इख्तियार करें, उनकी तरह मुसलमान हो जाएं, और हमको बस बताते कि इस्लाम अच्छी रास्ता है और इस्लाम ये सिखाता है। इस्लाम में एक ये बात थी कि जिसको हम उर्दू में अफरातियत बोलते हैं, एक्सट्रीमिज़म, ये नहीं है इसके अंदर। इसमें बहुत इत्तिदाल है, यानी बीच की रास्ता है, और इसमें सारे जो पैगंबर हैं, सारे जो औलिया हैं, हम सब पैगंबर को मानते हैं। तो इसमें एक तसलसल और कंटिन्यूटी नज़र आई, इसलिए यानी मुसलमान होने से पहले मैं बहुत यानी भगवद गीता भी पढ़ा था, लाउत्सी भी पढ़ा था, कन्फ्यूशन जो लिटरेचर है, जेन माइक्रोबायोटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा वो पढ़ा था। मुझको फिर कुरान में सारे जो मुकद्दस किताबों का जो असल पैगाम है वो मुझको नज़र आया। असल में मौलाना खान अफजल, ये सारे जो मेरे उस्ताद थे, ये 1970 की बात है नहीं, तो तकसीम उल हिंद पार्टीशन का कम वक्त हुआ था, तो सारे जो है देवबंद में और दिल्ली में पढ़े थे। तो मेरे एक उस्ताद था उस मौलाना खान अफजल, तो उनसे मैं पूछा कि मौलाना साहब आप दिल्ली में पढ़े और हिंदुस्तान कैसा जगह है? तो उन्होंने बोला कि जान मोहम्मद साहब, हिंदुस्तान की कुत्तों के पास भी आदमियत है। तो ये हमेशा बस मुझसे बोला करते थे कि हिंदुस्तान जाओ पढ़ने के लिए, हिंदुस्तान जाओ। बस मुझे ये खुशकिस्मती थी कि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, और उस वक्त में मेरे वीज़े की भी ज़रूरत नहीं थी।
बहुत साल रहे आप वहाँ पर, आपकी तालीम ली?
जी हाँ, मैंने जो सबक हासिल किया है देवबंद से, ये है कि बस इस्लाम जो है अमन की रास्ता है, शांति की रास्ता है। और एक बात तो आपको बताऊं कि बस मैं शुरू में पैसा नहीं था मेरे पास, तो मैं यानी कुछ इनोसेंट किस्म का, मासूम किस्म का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड किया करता था, पान ले जाया करता था, इस्लामी किताबें वहाँ से लाया करता था। यानी जो वक्त मुझको पढ़ने में गुजारना चाहिए था, मुझे बस लाहौर जाना और पान बेचने और इसमें बस गुजर रहा था। तो फिर मैं एक स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन किया था ICCR को, उन्होंने कहा बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप दे देंगे। उन्होंने कहा आप लोग ताजुब करते हैं कि आपको देवबंद के मदरसा में हिंदुस्तान की हुकूमत से आपको स्कॉलरशिप मिला? हाँ, उस वक्त में मुझको मिला।
जब आप देवबंद आए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, आप पहले ऐसे शख्स थे वहाँ पर जो सुबह जॉग पे जाया करते थे?
जॉगिंग के लिए जाया करता था, देवबंद में जाया करता था।
कैसा समय बीता फिर?
मुझे बहुत अच्छा लगा, इख्तलाफ है वहाँ कुछ ना कुछ उलमा के अंदर।
आप सालों तक सौत में रहे, उसके बाद वहाँ पर फ्लड्स भी आए, और उसके बाद वहाँ पर माहौल भी बदला।
फ्लड से पहले वो माहौल बदला,
तब और अभी में क्या फ़र्क है?
वो फ्लड जो है अजाब के तौर पर आ गया। सौत तो पहले बहुत अच्छी जगह थी, और आपने
तमाम लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत कोशिश की उस इलाके में, कभी डर लगा क्या क्या हुआ? मतलब
डर की बात नहीं है, मगर ये है नहीं कि बस अफसोस आता कि भाई देख लो मैं किस ज़माने में आया था, और यानी ज़ाहिर शाह के ज़माने में उन लोगों को खुद वो ज़माना याद नहीं है। वो जो अभी लोग आते ही नहीं लड़ने के लिए, वेस्ट से आता है, गर्ब से आता है और लड़ने के लिए और पैसा देने के बाद बस मैं कहता हूँ नहीं कि या बस दे आइदर थ्रो बुलेट्स और मनी एट अ प्रॉब्लम, या बस वो मसाला हो तो उसकी तरफ गोली भेज देते हैं या पैसा फेंक देते हैं। दूसरी किस्म के लोग आ गए, अभी हम उनमें से नहीं हैं।
जॉन मोहम्मद बट से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीती, लेकिन इसी महीने अमरीका में होने वाले 2 T20 मुकाबलों में उसे उससे कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। भारत वेस्टइंडीज सीरीज में क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज कल समाप्त हो गई। भारत ने इसे 2-0 से अपने नाम किया। सीरीज का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच जो पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया वो तो बारिश की भेंट ही चढ़ गया। पहले दिन केवल 22 ओवर का खेल हो सका, जिसमें वेस्टइंडीज ने 2 विकेट खोकर 62 रन बनाए। उसके बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर वहीं टंगा रहा। खैर, भारत ने एक ऐसी टीम से सीरीज जीती जिसे बेहद गंभीरता से नहीं लिया गया। इसके बावजूद विराट कोहली का पहले टेस्ट मैच में दोहरा शतक, आर अश्विन के 113 रन और उसके बाद आर अश्विन का दूसरी पारी में 7 विकेट लेना यादगार रहा। दूसरे टेस्ट मैच में लोकेश राहुल के 158 और अजिंक्य रहाणे के 108 रनों की शतकीय पारी पर हालांकि तब पानी फिर गया जब रोस्टन चेज ने नाबाद 134 और जेसन होल्डर ने नाबाद 64 रन बनाकर भारत के मुंह से जीत छीन ली और मैच को ड्रॉ कराया। तीसरे टेस्ट मैच में आर अश्विन फिर चमके और उन्होंने 118 रनों की शतकीय पारी खेली तो रिद्धिमान साहब भी चल निकले और उन्होंने 104 रनों के साथ अपना पहला शतक जमाया। भारत ने ये मैच 237 रनों से जीता। सीरीज समाप्त होने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने आर अश्विन और रिद्धिमान साहा की अहमियत को माना।
साहा के रन्स बनना, अश्विन नंबर 6 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये कुछ एरियाज थे जो हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसे 5 बॉलर खिला रहे हैं तो अगर आपको पता है लोअर ऑर्डर भी कॉन्फिडेंस में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो जो टॉप ऑर्डर है आपका वो और फ्रीली खेल सकता है, वो ज़्यादा प्रेशर में नहीं खेलेगा, अच्छे टोटल्स भी बनेंगे।
क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली ने भी भारतीय बल्लेबाजी को सराहा, लेकिन आर अश्विन को लेकर तो वो कुछ खास कहते हैं।
कप्तान ने तो पहले टेस्ट में ही दिखा दिया, वो लीडर हैं, पहला दोहरा शतक टेस्ट क्रिकेट में। अजिंक्य रहाणे जैसे कंसिस्टेंट बैट्समैन हो, हालांकि मुझे थोड़ा अफसोस रहा कि चेतेश्वर पुजारा वो अपनी जगह गंवा बैठे, पर आर अश्विन उभर के आए हैं एकदम ऑलराउंडर के रूप में, और क्यों नहीं, क्योंकि अश्विन ने जब अपना करियर शुरू किया था जूनियर क्रिकेट में एज एन ओपनर, वो बल्लेबाज से बहुत बढ़िया, और उनकी एक ख्वाहिश है कि वो टेस्ट मैच में भी कभी जाके ओपन करेंगे।
अब दोनों टीमों के बीच 2 T20 मुकाबले अमरीका में 27 और 28 अगस्त को खेले जाएंगे। वेस्टइंडीज की टीम में क्रिस गेल, सुनील नारायण, किरेन पोलार्ड और आंद्रे रसेल जैसे धुरंधर खेलेंगे। वेस्टइंडीज की टीम की ताकत और अमेरिका में इन मैचों के उत्साह को लेकर विजय लोकपल्ली कहते हैं,
विश्व चैंपियन अगर आप देखें, मेरे कुछ मित्र हैं अमेरिका में, उन्होंने ऑलरेडी टिकटें खरीद ली हैं, टीम के फ्लोरिडा पहुंचने से पहले ही टिकटें बिक चुकी हैं, 40,000 लोग खड़े मिलेंगे आपको मैदान में। अमेरिका में बहुत बड़ा मार्केट नजर आता है BCCI को, उनको एक लग रहा है शायद अमेरिका में ये खेल लोकप्रिय हो जाए।
टेस्ट सीरीज भारत ने भले ही 2-0 से जीत ली, लेकिन 2020 में वेस्टइंडीज से पार पाना भारत के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है।
भारत वेस्टइंडीज टेस्ट श्रृंखला। और अब सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने गंगा नदी से गाद निकालने में केंद्र सरकार की मदद मांगी। रियो ओलंपिक में भारतीय धावक OP जयशाह को मैराथन दौड़ में पानी न मिलने के आरोपों की जाँच के लिए 2 सदस्यों की जाँच टीम गठित की गई, जो 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। पाकिस्तान के कराची में निजी TV चैनल ARY के दफ्तर पर हमला करने के मामले में अतिरिक्त सुरक्षा बलों ने MQM पार्टी के 5 नेताओं को गिरफ्तार किया और दफ्तर पर छापे मारे। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।